તારીખ 18/12/1993 શ્રી સમયસર ગાથા 181-183 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 165
શ્રી સમયસર પરમાત્મા સંવર્ધિકાર કે 181-183 ગાથા કી ટીકા ચલતી હૈ દૂસરા પેરેગ્રાફ સે इसी को विशेष समझाते हैं। किसको विशेष समझाते हैं कि जैसे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के आधार से नहीं रहता है, नहीं टिकता है, ठीक उसी तरह ज्ञान भी रागादि के आधार से नहीं टिकता है, नहीं रहता है। ज्ञान को रागादिक, क्रोधादिक, देहादिक और कर्म का उदय के साथ आधार आदि संबंध नहीं है। आधार बुद्धि छूट जाने से एकत्व छूट सकता है। आधार बुद्धि है वो सुख के कारण से है। सुख मालूम पड़ता है तो जीव उसका आधार लेता है। जहाँ सुख मालूम पड़ता है वहाँ आधार लेता है। आधार बुद्धि छूटी तो एकत्व भी छूट जाएगा। एकत्व छूटना इसी का नाम भेद ज्ञान है। पर से एकत्व छूटना, पर द्रव और पर भाव से एकत्व छूटना, यही तो भेद ज्ञान है। तो इसी बात को, इसी विषय को दृष्टांत देकर और स्पष्ट करते हैं। जब एक ही आकाश को अपनी बुद्धि में स्थापित करके आकाश के आधार आदि भाव को विचार किया जाता है, तब आकाश को शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध ही होने से, अर्थात अन्य द्रव्यों में स्थापित करना अशक्य ही होने से, बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित नहीं होती। क्या लिया? एक ऐसा दृष्टांत लिया कि जहाँ कोई तर्क का अवकाश नहीं है। क्या? आकाश सर्वत्र व्याप्त है, उतना सर्वत्र व्याप्त है कि फिर इसके पीछे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, बाजू में, दसों दिशा में कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। दूसरे जो पांच द्रव्य है वो तो आकाश के क्षेत्र में एक परमाणुवत है, जैसे 14 ब्रह्मांड है, सारा लोक सिद्धालय से लेकर के, सिद्ध शिला से लेकर के सातवीं नारकी तक का जो पुरुषाकार लोक पुरुष संस्थान है, पुरुषाकार जो पूरा लोक है, 14 ब्रह्मांड है, वो पूरा आकाश में एक परमाणु जितना दिखता है। कितना?
परमाणु,
अणु, रेणुवत ऐसा कहते हैं। इतना आकाश बड़ा है, उसको दूसरा कोई द्रव्य का आधार हो सकता है क्या? कि वहां तो तर्क का भी कोई अवकाश नहीं है। वहां कोई तर्क लगा सकते, कोई गुंजाइश है तर्क की कि नहीं है? तो जैसे आकाश किसी दूसरे पदार्थ के आधार से रहा है, वो तो खाली जगह हो तो कोई आधार देवे ने, तो कोई वस्तु स्थिति नहीं मालूम पड़ती। तो ऐसे आकाश को अपनी बुद्धि में लेते हैं, इसका विचार किया जाता है, तो भिन्न आधार के कोई अपेक्षा उसमें आती नहीं। भिन्न आधार की कोई अपेक्षा उद्भूत, प्रभावित नहीं होती, और उनके प्रभावित नहीं होने से क्या निश्चय होता है? एक आकाश ही एक आकाश में ही है। क्या? एक आकाश अखंड द्रव्य है, अनंत प्रदेश है, लेकिन एक अखंड द्रव्य है और वो उसमें अपने आप में है। उसको रहने के लिए, टिकने के लिए, परिणमन के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है। परिणमन में कालाणु निमित्त है, लेकिन कितने क्षेत्र में है कालाणु? अनंत में भाग में है, बाकी इतना बड़ा द्रव्य है। तो कालाणु के कारण से परिणमन करता है कि अपनी परिणाम शक्ति के कारण से परिणमन करता है? परिणाम शक्ति कितनी बड़ी है कि अनंत है। अनंत काल तक परिणमन होता ही रहे, होता ही रहे, परिणमन बंद होने वाला नहीं। परिणमता हुआ क्षण द्रव्य कभी थक जाता है क्या? परिणमते परिणमते हम चलते चलते थक जाते हैं, दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। अरे चलते चलते क्या थकते, सोते सोते भी थक जाते हैं, बैठे बैठे भी थक जाते हैं। तो खड़े रहने में थके, चलने में थके, तो थके ही थके। इन परिणमन में कोई द्रव्य थकता नहीं है, क्योंकि अनंत शक्ति है परिणाम करने की, अनंत शक्ति है। स्वभाव अनंत होने से उसमें कोई थकावट होती नहीं है। स्वभाव में थकावट आती है, कोई राग कितना भी सुहाता हो लेकिन उसमें थकावट आ जाएगी। क्या कहते हैं कि एक आकाश ही, एक आकाश में ही प्रतिष्ठित है, अच्छी तरह रहा हुआ है। वहां से अपने से स्वरूप में से वो विचलित होने वाला नहीं है, नहीं इसको कोई यहां से विचलित कर सकता भी। यह भली भांति समझ लिया जाता है, क्या यह अच्छी तरह समझ में आ जाता है, और इसलिए ऐसा समझ लेने वाले को पर आधार आधेयत्व भाषित नहीं होता है। यानी किसी को ऐसा विकल्प कभी आ सकता है क्या कि आकाश को हम थोड़ा आधार दे देवे ना तो गिरे नहीं, क्यों? गिरने की कोई जगह ही नहीं है नीचे। जो चंद्र सूरज ऊपर चलता है उसको भी आधार देने का विकल्प नहीं आता है, तो फिर आकाश को आधार देने का विकल्प आएगा किसी को?
नहीं आएगा।
आ सकता नहीं, विकल्प ही नहीं उठेगा। उसका स्वरूप ही ऐसा है कि किसको विकल्प भी नहीं आएगा, क्योंकि भाषित नहीं होता, लगता नहीं है। देखो यहाँ पहले वो लिया कि आकाश का विचार करने में आए, तो फिर अंत में क्या लिया कि ऐसा भाषित नहीं होता। मैं विचार शब्द निकाल दिया, निश्चय किया कि एक आकाश आकाश में ही है लेकिन ऐसा भाषित होता है। भाववासन ले लिया, मैं आकाश के स्वरूप का भाववासन लिया है। विचार कर कर करके कहां तक आना है? भाववासन में आना है। ऐसी बात है, पद्धति देखो आचार्य महाराज की। इस प्रकार जब एक ही ज्ञान को अपनी बुद्धि में स्थापित करके ज्ञान का आधार आधेय भाव का विचार किया जाए, तब ज्ञान को शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध ही होने से बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित। तो यहाँ तक तो अल्प विराम लिया है, वहां तक तो विचार करने की बात है। फिर निश्चय होता है उसमें भाव वासन होता है, ऐसा लेना है क्या? मुमुक्षु जीव वस्तु के स्वरूप का, मैंने अपने स्वरूप का ज्ञान के माध्यम से पहले विचार करता है। द्रव्य स्रोत मिलता है उसको, तो द्रव्य स्रोत में वो बात कही कि देख तेरा ज्ञान है उसको किसी का आधार नहीं है। ज्ञान को क्या करना, विचार करने में अपनी बुद्धि में स्थापित करके। तो बुद्धि कौन है? ज्ञान है। क्या बुद्धि भी ज्ञान के पर्याय है? और ज्ञान के पर्याय में किसको स्थापित करना? ज्ञान को स्थापित करना। अब वो करने के स्थापित करने की बात आई है। क्या अन्य द्रव्य का तो विचार किया जाता है, वो तो दृष्टांत है, क्योंकि वो तो अपनी बुद्धि में उसको ला नहीं सकते। आकाश को अपने ज्ञान में, पदार्थ को नहीं ला सकते। पदार्थ का ज्ञान होता है, पदार्थ नहीं आता है ज्ञान में, पदार्थ का ज्ञान होता है। लेकिन ज्ञान तो ज्ञान में लाने का सवाल ही नहीं, वो तो है ही। जब एक ही ज्ञान को, एक ही ज्ञान, मैंने क्या कहा, एक ही ज्ञान क्यों कहते हैं कि अनेक ज्ञेयाकार ज्ञान होता है, इसकी बात हम कहीं करते नहीं है। क्या अनेक ज्ञान की बात नहीं करते हम? इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, अनेक ज्ञान की बात में ना ज्ञान विशेष की बात नहीं चल रही है, एक ज्ञान की बात चल रही है, जो ज्ञानाकार ज्ञान है, ज्ञेयाकार ज्ञान नहीं है। ज्ञान का दो रूप है। क्या सर्वार्थ सिद्धि की टीका में भगवान पूज्यपाद स्वामी ने वो बात कही है कि ज्ञान का दो रूप है, ज्ञानाकार ज्ञेयाकार। ज्ञानाकार है और ज्ञेयाकार भी है, तो यहाँ ज्ञेयाकार ज्ञान को नहीं लेना है, क्योंकि वो अनेक रूप होता है, एक रूप नहीं होता है। विकल्प को शांत करना है ना, तो अनेक के आश्रय से विकल्प शांत होगा या एक के आश्रय से विकल्प शांत होगा? चलित पदार्थ के आश्रय से अचलितता हो सकती है क्या परिणाम की? कि अचलित पदार्थ के आश्रय से अचलता होती है, अचलित पदार्थ का आश्रय करें तो अचलितता हो गई। जैसे दृष्टांत ले, वो घड़ी का पेंडुलम जो है इधर से उधर जाता है, तो कोई उसको देखने वाले की दृष्टि स्थिर रह सकती है क्या?
नहीं।
इधर जाएगा तो इधर आ जाएगी, इधर जाएगा तो इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, तो दृष्टि में स्थिरता नहीं आएगी। स्थिर पदार्थ होने से दृष्टि स्थिर हो सकती है। ऐसे अनेक पदार्थ जो ज्ञान में आते हैं वो टिकते नहीं, ज्ञान के पर्याय किसी एक पदार्थ पर तो टिकती नहीं है। वो अनेकाकार होने वाला ज्ञान पलटता दिखता है, पलटता दिखता है, पलटता दिखता है, तो उससे ज्ञान का स्वरूप मालूम पड़ेगा नहीं। दोनों प्रतिपक्ष में है, एक अनेक रूप है, एक एक रूप है। अनेक रूप में से एक रूप में कैसे जाएंगे? हाँ, समझाने के लिए ऐसा बोलेंगे कि देख तेरा ज्ञान ज्ञेय को जानता है कि नहीं जानता है, इससे भी आगे जाना पड़ता है। कैसा समझने वाला? नहीं समझने वाला है तो तू राग करता है कि नहीं है, तो राग आत्मा करता है कि कौन करता है, ऐसा कहेंगे उसको। यहाँ से भी नहीं समझे तो तुम देह में जिंदा हो के नहीं है, ये देह को कौन चलाता है, हाथ ऊंचा नीचा कौन करता है, देह का हलन चलन कैसे मालूम पड़ता है कि भीतर में जीव है, तो वहां से समझाना पड़ता है। अनुभव प्रकाश में तीन गुफा लिया है, तो क्या है, कोई जीव कहाँ से समझता है, कोई जीव कहाँ से समझता है, तो बात तो हर तरह की आएगी, भिन्न भिन्न योग्यता के सामने हर तरह की बात आ सकती है। यहाँ तो अपने को, जो लोग हमेशा अभ्यास करते हैं तत्व ज्ञान का, उनको कहते हैं कि ज्ञेयाकार ज्ञान को गौण करके, क्या करके, ज्ञेयाकार ज्ञान को गौण करके, जब एक ही ज्ञान को अपनी बुद्धि में स्थापित करो, तो एक ही ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान है। अब देखो प्रयोग की बात चल जाएगी, अपनी बात है ना ज्ञान की, इसलिए ज्ञान का तो प्रयोग है ये, कि एक सामान्य ज्ञान को विशेष ज्ञान में ले आप, बुद्धि तो विशेष ज्ञान है, जो इधर उधर जाती है तो कहते हैं कि अपनी बुद्धि को मैंने ज्ञान विशेष को ज्ञान सामान्य पर ले जाओ, और दोनों एक ही पर्याय में है, ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष होकर के एक पर्याय है, पर्याय तो अलग नहीं है। तो क्या है कि वो ज्ञाकार है वो रहेगा नहीं, विशेष ज्ञान में बुद्धि में अनेक ज्ञाकार है, वो तो वैसे ही मिटने वाला है, वो मिट जाता है नवा ज्ञाकार आता है, मिट जाता है नया ज्ञाकार आता है। अब मिट जाए और वो बुद्धि इधर ज्ञान सामान्य पर आ जाए तो नया कोई आकार आएगा नहीं ज्ञान विशेष में, तो जैसा ज्ञान सामान्य है वैसा ज्ञान विशेष हो जाएगा, हो गया एक आकार, एक आकार हो गया, जैसा ज्ञान आकार सामान्य है वैसा ही ज्ञान आकार विशेष हो जाएगा। हाँ, जब एक ही ज्ञान को अपनी बुद्धि में स्थापित करके यहाँ तो प्रयोग लिया है, नान का आधार आधे भाव का विचार किया जाए, एक रूप जो ज्ञान सामान्य है उसको किसका आधार है, तब तो ज्ञान को शेष निद्रव्य में आरोपित करने का निरोधी होने से बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित नहीं होती, ये यहाँ तक विचार है बुद्धि मैंने विचार में, कि जब विचार करने वाला ज्ञान का पर्याय ज्ञान सामान्य को अवलोकन करता है देखता है तो उनको लगता है कि इसको किसी का आधार नहीं है, मेरे ज्ञान को किसी का आधार नहीं है। अब देखो विशेष ज्ञान में ये संभव नहीं है ऐसा प्रयोग करना, क्योंकि विशेष ज्ञान में ज्ञेय अनुसार ज्ञान होता है, जैसा काला रंग है तो काला ज्ञान में आता है, पीला वाला पीला आता है, कोई गोल पदार्थ है तो गोल दिखता है, कोई चौरस है तो चौरस दिखता है, तो वहां ऐसा लगता है कि वो पदार्थ है घड़ा है तो घड़ा का ज्ञान हुआ, घड़ा नहीं होता तो घड़ा का जानना नहीं होता, पहले घड़ा नहीं था तो घड़ा का ज्ञान हमको नहीं हुआ था, जब हमारे ज्ञान के सामने घड़ा आया तो हमको घड़ा का ज्ञान हुआ, तो उसमें भ्रांति वो चली है अनादि से, ज्ञेय के आधार से ज्ञान उत्पन्न होता है, वो भ्रांति है। ज्ञेय ज्ञायक निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी ज्ञेय के आधार से ज्ञान होता नहीं, ज्ञान का ज्ञेयाकार ज्ञान का कारण ज्ञेय है या ज्ञान है, ज्ञेय बिल्कुल नहीं है, 1% के 1% भी नहीं, नहीं है, एकांत हो जाएगा नहीं होगा, वो विषय नहीं चलता है, पहले ये समझो कि विषय क्या चल रहा है, यहाँ ग्रहण त्याग का विषय नहीं है, हमको ज्ञान का स्वरूप निरालंब निरपेक्ष है ऐसा हमें निश्चय करना है, विश्वास करना है और श्रद्धा करनी है, ये विषय चलता है, विश्वास होने का प्रयोग क्या है कि उल्टी स्थिति में हम खड़े हैं तो हमको ये लगता है कि ज्ञेय आता है तो ज्ञान होता है, ज्ञेय नहीं आता है तब तक ज्ञान नहीं होता है, इसलिए ज्ञेय के आधार से ज्ञान होता है, यही हमारा विश्वास है, यही हमारी बुद्धि है, बुद्धि में अभिप्राय है और यही हमारी श्रद्धा है, हो गया। दृष्टांत लेते हैं अपन, कि जैसे किसी का मृत्यु का समाचार आता है, समाचार नहीं आए इसके पहला कोई हरक शोक नहीं हुआ था, था कोई कोई बात सुनते ही शोक हो गया, तो ज्ञान होने से ऐसा हुआ ना, ज्ञान नहीं होता तो नहीं होता। तो हमारी बुद्धि, हमारा श्रद्धा, हमारा विश्वास ऐसा जम गया है कि जैसा जैसा ने होता है वैसा वैसा हमारा ज्ञान को परिणम ना होता है, इसलिए आधार आधेपना हमारा बना रहता है, वह उसको ना देते हैं। यहाँ ऐसी बात
नहीं है,
बिल्कुल नहीं है। ज्ञान के आधार, ज्ञेय के आधार से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान का स्वकाल है, ज्ञान के कारण से ज्ञान होता है, ज्ञेय के कारण से
नहीं। ऐसा होना था कि ऐसा हुआ,
उसी काल में ज्ञान की ऐसी पर्याय होने वाली थी इसलिए हुई।
ये ज्ञाकार ज्ञान है, वो सही अर्थ में तो ज्ञान आकार
है, सही अर्थ में तो ज्ञान आकार है वो, इसलिए निराकार जो भी है वो ज्ञान की ही पर्याय है, नहीं की तो नहीं। निराकार जो ज्ञान हुआ वो पर्याय किसकी है, ज्ञेय की है कि ज्ञान की है? तो ज्ञान की है, तो ज्ञान का आकार उसको कहेंगे। उस दृष्टिकोण से निराकार भी ज्ञानाकार है, लेकिन यहाँ तो वो बात नहीं लेना है। यहाँ तो आकृति ज्ञान में आ गई, या किसी वस्तु का ज्ञान में नहीं पड़ा हुआ, उसका आधार कौन, उतना ही विचार करना है हमको कि उसके कारण, नहीं के कारण से ये ज्ञान बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा तो हमको लगेगा नहीं, सीधे सीधा विचार करेंगे तो वहां तो तर्क होता है कि देखो पहले चीज नहीं थी तो ज्ञान नहीं था, फिर चीज नहीं चली गई तो फिर उसका ज्ञान नहीं है, दूसरी चीज आई इसका ज्ञान हुआ, फिर तीसरी ज्ञान में आई तो इसका ज्ञान हुआ। तो वहां तो तर्क ऐसा है कि ज्ञेय नायक निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से विश्वास जो अनादि से उल्टा जमा है, श्रद्धा उल्टी जम गई है, उसको निकालना कठिन है। अब उसको कैसे निकालना है, उसका प्रयोग करवाना है कि तुम अपने एक ही ज्ञान को अपनी बुद्धि में ले लो और फिर देखो कि ज्ञान स्वयं पैदा होता है, स्वयं उत्पन्न होता है, या कोई ज्ञेय उसको उत्पन्न कराता है। जैसे अन्य पदार्थ का ज्ञान हुआ तो अन्य पदार्थ को तो पता ही नहीं कि मैं उसको ज्ञान कराया, नहीं को पता है कोई जानकारी है कि मैंने उस जीव को ज्ञान कराया मेरा स्वरूप का, क्योंकि ज्ञान अपनी शक्ति से होता है। निमित्त को गौण करेंगे तो पता चलेगा कि ज्ञान उपादान भूत अपनी जो शक्ति है उससे ज्ञान हो ही रहा है। इसका तर्क सबसे बड़ा वो है कि अगर उसको आप बंद करना चाहे तो बंद भी होगा नहीं, चलो ज्ञान करने का छोड़ दो, हमको जानना ही नहीं है,
आप उसको समझा रहे तो हमारी समझ में आता है,
इसलिए तो भ्रांति होती है। हम समझाते हैं इसलिए अगर आपके समझ हो सकती हो तो सबको एक सी होनी चाहिए, ये हमारा तर्क समझे आप। एक मास्टर जी बनाते हैं, पढ़ाते हैं स्कूल में, और स्कूल क्लास में 50-100 विद्यार्थी होते हैं, क्या सब सर के समझते हैं? अगर मास्टर जी से या गुरु के कहने से ज्ञान होता हो तो सबको एक सा हो जाना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके जितनी उपादान शक्ति है उतना ही ज्ञान होता है, उस काल की उपादान शक्ति, ज्ञान की उपादान शक्ति के अनुसार ज्ञान होता है, उपदेश के अनुसार नहीं होता है। अगर उपदेश के अनुसार होता तो जिन लोगों ने समझसार पढ़ा सबको सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए था। ये तो सम्यक दर्शन का निमित्त भूत शास्त्र है, क्या है? समय सार शास्त्र तो सम्यक दर्शन का निमित्त है, पर हुआ भी कई ज्ञानियों को इसके निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ भी। अगर सम्यक समय सार सम्यक दर्शन कराता है तो जो भी पढ़े उनको हो जाए, भगवान के दिव्य ध्वनि, तीर्थंकर देव के, बहुतों का होता है वहां सम्यक दर्शन, उसी वाणी के निमित्त से सम्यक दर्शन होता है, उसी वाणी के निमित्त से मुनिपणा भी आता है, उसी वाणी के निमित्त से केवल ज्ञान भी हो जाता है। बारहवें गुण स्थान तक द्रव श्रुत का अवलंबन लिया गया है शास्त्र में, क्या 13वें में नहीं, केवल ज्ञान होने से। तो सबका हो जाना चाहिए था, लेकिन जितने केवली हुए वो सबसे कम हुए केवली। केवल ज्ञान हुआ उसकी संख्या कम है, इससे ज्यादा मुनि है समवसरण में, और इससे ज्यादा सम्यक दृष्टि है समवसरण में, और इससे ज्यादा मिथ्या दृष्टि है समवसरण में। तो बहुमति हो गई मिथ्या दृष्टियों की। तो बहुमति से काम चलाना हो तो समवसरण तो भगवान के एकमति से चलता है, बहुमति से नहीं चलता है। वहाँ डेमोक्रेसी नहीं चलती, समवसरण में डेमोक्रेसी नहीं चलती। कुछ नहीं, कुछ इलेक्शन फिलेक्शन कुछ नहीं। भगवान की वाणी से अगर लाभ होता तो मिथ्या दृष्टि ज्यादा कैसे होते या ज्यादा कैसे रहते? केवली ज्यादा हो जाना चाहिए था, या सभी केवली हो जाना चाहिए था, एक भी क्यों रह जाए? भगवान जब सदमस्त थे तब तो उनकी भावना ऐसी थी कि सब ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, सब जीव परमानंद को प्राप्त करें। तो भगवान की भावना सफल होती है क्या? तो वस्तु स्थिति के अनुकूल राग है, वो वस्तु स्थिति के अनुकूल होता ही नहीं। राग के अनुसार वस्तु स्थिति नहीं होती, ज्ञान के अनुसार वस्तु स्थिति होती है। कोई भी जीव का, तीर्थंकर का भी राग हो तो भी उसके अनुसार वस्तु स्थिति नहीं होती है। राग आया, सभी जीव करो शासन रसी, सब जैन हो जाए, जैन भी सब नहीं हो, केवल ज्ञान की क्या बात करते हो, सब जैन भी हो सकेंगे नहीं। भगवान की वाणी से अन्य मत, वाणी सुनते सुनते अन्य मत ही हो जाते हैं, क्या करें? भगवान क्या करें इसमें?
आदिनाथ भगवान के समय में इससे खंडन हो गए।
हाँ, पहले तो कोई नहीं थे, सुनते सुनते हुए, क्या हुआ? भगवान क्या करें उसमें, क्या करेंगे भगवान? कुछ कर सकते हैं क्या?
नहीं।
भगवान कुछ कर सकते हो तो ये बात बनने वाली नहीं थी। इसलिए सभी जीव चाहे विभाव रूप परिणमन करे चाहे स्वभाव रूप परिणमन करे स्वतंत्र रूप से करते हैं, किसी के अधीन कोई होते नहीं, कोई रहते नहीं, कोई परिणमन करते नहीं। ये वस्तु स्थिति है, वही स्वतंत्र, विपरीत में भी स्वतंत्र, अविपरीत में भी स्वतंत्र। ऐसा माने तो अपना दोष अपने कारण से होता है, दूसरे के कारण से नहीं होता है। ये आरोप लगाना छूट जाएगा, दूसरे पर आरोप लगाने का बेईमानी छूट जाएगी, वो बेईमानी है, अंतर्दृष्टि उपादान की दृष्टि आएगी। वो ये प्रयोग करने का है, ये जो विषय लिया है आचार्य महाराज ने, स्वरूप निश्चय कराने का विषय है। अपनी बुद्धि में एक ही ज्ञान को लिया जाए तो ज्ञान को अन्य शेष द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध हो जाता है, विकल्प ही नहीं उठेगा कि मेरा ज्ञान को मैं किसी और को है। अपनी इच्छा करते हो उतना कार्य हो जाता है क्या? जब वस्तु स्थिति हो तो जितनी इच्छा करे उतना कार्य हो जाए, बनता है क्या? बन सकता है क्या? हाँ? नहीं बने, कभी नहीं बने। कभी बनता है तो वो भी इनके कारण से बनता है, इच्छा इच्छा के कारण से, पदार्थ का परिणमन पदार्थ के कारण से। और वो पदार्थ को ऐसे परिणमन करने की उपादान भूत शक्ति उसमें थी कि नहीं थी? वो शक्ति बिना का खाली था, कि कोई पदार्थ में अपना परिणमन करने की शक्ति कभी नहीं हुए ऐसा एक समय भी नहीं होता है। जब इनकी शक्ति से वो स्वयं कार्य करता है तो फिर हमारी इच्छा से कार्य हुआ, ये बात कहां से आई?
ये समय
तर्क ठीक है कि इच्छा हुई उस वक्त तो कार्य नहीं हुआ, कार्य हुआ तो इच्छा नहीं रही, फिर इच्छा से कार्य हुआ है कैसे बना। तो गुरुदेव के पास कोई आदमी आया होगा, बोला कि देखो हम हाथ को ऐसे ले सकते हैं, हमारी इच्छा है, इच्छा के साथ ही हमने ऐसा मार दिया मोड़ दिया, क्योंकि तुम्हारी इच्छा से तुम ऐसा मोड़ दिया तो तुम्हारी इच्छा से तुम ऐसा भी मोड़ दो, जैसे इधर लाते हो तो उल्टी दिशा में ले जाओ, तुम्हारी इच्छा करो ना। तो तर्क के सामने तर्क ऐसा दे दिया, ये तो नहीं हो सकता, क्यों तुम्हारी इच्छा नहीं, क्यों नहीं होता है, अगर तुम्हारी इच्छा से होता है तो ये अंगली ऐसे भी होती है, इधर इधर स्पर्श करता है तो ऐसे इसको इधर स्पर्श करा दो, जब ये वो बढ़ करके इधर स्पर्श करती है तो उसको इधर इधर स्पर्श करा दो,
इच्छा उचित होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो कार्य हो सकता है ऐसा होवे तो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, पैरालिसिस होए उसको बोलो उठाओ हाथ, नहीं उठा सकता है, कहाँ गया इच्छा, कहाँ गई, ये तो हो सकता है, इसका मतलब कि उसको उपादान में वो परिणमन का काल है, शक्ति है तो होगा, तुम्हारी इच्छा से कुछ होने वाला नहीं। और तुम तर्क लड़ाते हो तो हम तुमको पूछते हैं, अभी तुम ऐसे उठपटांग तर्क लड़ाते हो तो हम तुमको पूछते हैं कि तुम तर्क वितराग होने के लिए लड़ाते हो या रागी होने के लिए लड़ाते हो, ये बताओ तुम्हारा हेतु बताओ, तुम्हारा तर्क से तुम रागी बन जाओगे या वितरागी हो सकते हो, ये बताओ। तो तुमको ये तत्व ज्ञान का अभ्यास रागी होने के लिए करना है, राग बढ़ाने के लिए करना है कि वितरागी होने के लिए करना है, लगता है कि तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नियत शुद्ध नहीं है, बिल्कुल अगर तुम सिद्ध करते हो ऐसी श्रद्धा करते हो तो अनादेश है ही तुम्हारी श्रद्धा, तो तुमको तो ये श्रद्धा छोड़नी नहीं है, इस श्रद्धा से तुम दुखी हो या सुखी हो, क्या है
दुखी
बताओ, कि दुखी दुखी है क्या, अब तुमको ये दुख छुड़ाने के लिए आया हो तत्व तो ज्ञान अभ्यास करने में के बाद भी बात करना है, तर्क लड़ाना है, क्या करना है, हेतु पहले समझ लो कि चर्चा करने का, शास्त्र पढ़ने का, सुनने का क्या हेतु है, और हमारे हेतु के अनुकूल हम हमारी विचारधारा है या हमारे हेतु के प्रतिकूल हमारी विचारधारा चलती है, उतना भी ख्याल नहीं है विचार करने वाले को, उसको तो उसका तो तर्क हवा में चलता ही रहेगा, उसका निविड़ा आने वाला नहीं है कभी, ऐसी बात है। अच्छा नहीं वो है बात है ही वैसे कि तुम्हारी बुद्धि है तर्क लड़ाने की, जान लिया एक रूप से मैं है तुम्हारे पास कि जैसे कैसे भी तुम तर्क लड़ा सकते हो, नहीं हम पूछते हैं इसके पीछे तुम्हारा हेतु क्या है, क्या किसी को हराने का जिताने की बात है या कोई अपना कल्याण करके वितरागता लाने की बात है, कोई ये बात करो तो वितरागता के अनुकूल वस्तु का स्वरूप ज्ञान वितरागता को ले आती है, क्या वस्तु स्वरूप का ज्ञान क्या लाती है, उसका फल वितरागता है, उल्टा तर्क नहीं लड़ाएंगे तो आएगी, उल्टा तर्क लड़ाएंगे तो नहीं आएगी, वो बात भी साफ है, क्या वो बात भी साफ है। हाँ किया ही नहीं, चर्चा ही नहीं किया था गुरुदेव ने, चर्चा नहीं किया, उसमें तो आर्जित का भी सवाल नहीं था, उसमें तो क्या है कि संख्या ज्यादा होती है तो ज्यादा संख्या वाले लड़ाई करने को चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि अपनी संख्या ज्यादा है तो मार तो वो खाएंगे। तो पता चल गया कि यहाँ तो लड़ाई होने वाली है, चर्चा होने वाली नहीं है, और हमको तो लड़ाई किसी से करनी नहीं है। तो गुरुदेव ने बिना चर्चे किया पहले तना छोड़ दिया था, चर्चा नहीं करेंगे। जिज्ञासा चाहिए, भावना चाहिए, वाद विवाद करने का ये विषय नहीं है। ये विषय कोई वाद विवाद करने का नहीं, वाद विवाद करे सो अन्ना। बनारसी दास ने उसको अंधा बोला है, जिसको ज्ञान नहीं है, ज्ञानांध है, कोई वाद विवाद करेगा। सदगुरु कहे सहज का धंधा, सहज मैंने सहज परिणमन को, सहज स्वरूप को देखो, सहज परिणमन करो, अपना सहज स्वभाव के अनुकूल परिणमन करो, ये वितरकता है। ये प्रयोग करने लायक है। एक ही ज्ञान में, ज्ञान सामान्य में अपनी बुद्धि में स्थापित करके ज्ञान का आधार आधे भाव का विचार किया जाए, तब ज्ञान को शेष द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध ही होने से बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित नहीं होती। अगर ये प्रयोग किया जाए तो अच्छी तरह निश्चय हो जाएगा बुद्धि में कि दूसरा द्रव्य का आधार मेरे ज्ञान को नहीं है, वो स्वयं हो रहा है, सतत हो रहा है, और कहीं भी ज्ञान में दूसरे का प्रवेश नहीं है। आरोप नहीं कर सकते कि ज्ञान में दूसरा द्रव्य आया।
ऐसा प्रयोग तो कई बार किया हुआ है, क्यों भूल जाते?
किया है क्या? तो किया तो उसका फल क्या आया? ऐसा प्रयोग किया है तो इसका फल क्या आया?
मालूम है, चाहिए
है?
मालूम है ना, चाहिए।
देखो उसको क्या कहेंगे आगे। ऐसा प्रभावित नहीं होने से अगर ऐसा विचार किया हो और भिन्न आधार नहीं है ऐसा मालूम पड़ गया, तो एक ज्ञान ही, एक ज्ञान में ही क्या प्रतिष्ठित है मेरा एक ज्ञान ही, एक ज्ञान अपने आप में ही अच्छी तरह रहा हुआ है, ऐसा भली भांति समझ लिया जाता है, ऐसा समझ आ जाता है, ऐसा भाव भाषण आ जाता है। या भाव भाषण लेना, तो ये समझ बराबर नहीं है। क्या
करना नहीं
है? प्रतिष्ठित करना नहीं है, प्रतिष्ठित है ही। क्या ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित है ही, करना नहीं है। लेकिन ऐसा पहले हमको भाषित नहीं होता था, ऐसा भाषित होता है। तद प्रभवच एकम ज्ञानम एकम अस्मिन् ज्ञानेव प्रतिष्ठितम विभावयतो विभावयतो न पर आधार आधेयत्वं प्रतिभाति। देखो, पर का आधार आधे भाव प्रतिभासमान नहीं होता। प्रतिभाति भाव वासन भाव शब्द लिया है, ज्ञान में ही आ जाता है। ज्ञान में कौन आता है? स्वयं आता है। मेरा ज्ञान को किसी का आधार नहीं है। तो ज्ञान को आधार, ज्ञान कौन है? कि ज्ञान है वो आत्मा है, मेरे आत्मा को किसी का आधार नहीं है। ऐसा हुआ
है,
हाँ। वेद ज्ञान ऐसे होता है कि दूसरों से मैं भिन्न हूँ, दूसरे द्रव्य और भाव से, पर भाव से और पर द्रव्य से मैं बिल्कुल भिन्न हूँ, किसी के आधार की मुझे जरूरत नहीं है। किसी के आधार की भी मुझे जरूरत नहीं है, मैं निरालंब निरपेक्ष हूँ। किसी की फिर किसकी परवाह करेगा? करेगा किसी की परवाह
नहीं,
किसी की परवाह करेगा नहीं। ये बात है।
शरीर चलाने के लिए खाने पीने की जरूरत है, शरीर चलाने के लिए खाने पीने की जरूरत है कि नहीं
है? शरीर हम है क्या?
नहीं है, है?
नहीं, शरीर हम है
नहीं।
तो फिर हम कैसे चलाएंगे, हम कैसे चलाएंगे उसको? हमारा आधार है क्या?
नहीं,
हम जीव है या हम शरीर है?
जीव है,
पहले तो वो बात है। हम जीव है कि हम शरीर है? पहला पाठ में क्या आता है, पाठमाला में, कि हम शरीर नहीं हम जीव है। फिर चलाने फलाने की बात कहाँ से आई? ऐसे समझने वाले को पर आधार आधेयत्व भाषित नहीं होता, लगता नहीं। क्या कहते हैं भाषण होना, मैंने क्या कि ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे किसी का आधार है, शरीर के आधार से मैं जिंदा रहता हूं, ये लगेगा नहीं। क्या शरीर छूट जाएगा तो अनंत छूट गया, एक और छूट गया, हमारे में से कुछ छूटा नहीं है, ऐसी बात है। हमारे से क्या, हमारे में से क्या छूटता है? शरीर छूटने से हमारे में से क्या छूटता है बताइए? क्या छूटता है?
बंधन।
तो अच्छी बात है, बंधन छूटे तो रोने लगना, कि बंधन छूटे तो खुश होना, क्या करना है? भाषित नहीं होता, क्या लिया? भाषण होना, ये साहित्य की परिभाषा है। भाषित होना मैंने लगना, क्या तो फिर विचार समझना, वो विचार की बात है, वो थिंकिंग की बात है, और भाषित होना वो लगने की बात है, वो फीलिंग की बात है, दो में बहुत फर्क है। विचार में अनुभव नहीं, फीलिंग में अनुभव है, तो अनुभवांश है। भाषित होता है तो अनुभवांश से निश्चय हुआ, ऐसा कहते हैं। क्या ज्ञान स्वरूपी मेरी आत्मा निरालंब निरपेक्ष है, ऐसा अनुभवांश से निश्चय होता है, उसको भाषण कहने में आता है। तो ऐसा लगने लगता है, ऐसा फील होता है। आपने बोला वो विचार की बात थी, कैसा हमने बहुत विचार किया है, हम समझ गए हैं, लेकिन भाव भाषण नहीं, नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ बताइए, अब इसको हम समझे, ऐसा क्यों हुआ? हमारी समझ तो आगम के अनुकूल हुई थी, कि हमने जो समझ किया उसमें अपने ज्ञान में अपने बुद्धि को स्थापित करके नहीं किया था। जब समझ किया ऐसे और भाव भाषण नहीं हुआ तो क्या किया था हमने, कि हम अपनी बुद्धि में ज्ञान ज्ञान को स्थापित नहीं किया था, ज्ञान में अपनी बुद्धि को स्थापित नहीं किया था।
तो फिर क्या किया था?
राग में बुद्धि को स्थापित किया था और विचार किया था। क्या इस वक्त जो विकल्प चला विचार के समय, विचार है वो ज्ञान और राग की मिश्रित पर्याय है। तो क्या है कि अनादि से हमारी आदत राग के आधार से विचार करने की है, ये हमारी उल्टी पद्धति है। विचार हमको ज्ञान का करना है और आधार राग का लेकर के करते हैं, विपरीत कार्य है, कार्य पद्धति विपरीत है। ज्ञान का विचार करना है तो ज्ञान में आ जाओ, ज्ञान को ज्ञान में ले जाओ, विचार में जो ज्ञान है उसको ज्ञान में ले जाओ, और ज्ञान के आधार से ज्ञान का विचार करो तो भाव भाषण हो जाएगा। क्योंकि वेदन करने का गुण राग में है कि ज्ञान में है? ज्ञान में है। तो ज्ञान ज्ञान में आएगा तो ज्ञान का वेदन से उसका निश्चय होगा, और ज्ञान राग का आधार से विचार करेगा तो ज्ञान का वेदन नहीं आएगा, जो निश्चय होगा तो भाव भाषण वाला नहीं होगा, ये गलत निश्चय है, ऐसा आनंद मार किया है। वो पद्धति उल्टी है, वो छुड़ाने की बात है। क्या इस पद्धति को छुड़ाने की बात है। સમજના હે ભાવ ભાષણ કરના હે તો સ્વરૂપ નિશ્ચય મે આયેગા. આચાર્ય મહારાજ વો કહેના ચાહતે હૈ કે એસે ભેદ જ્ઞાન કે પ્રયોગ સે તુમકો પહેલે ભાવ ભાષણ હોગા. ભાષિત લિયા હૈ યહાં તો સમર હોગા એસા નહીં લિયા હૈ. ટીકાકર આચાર્ય મહારાજ ને તુમકો સમર હો જાયેગા એસા નહીં લિયા હૈ, તુમકો ભાવ ભાષણ હોગા એસા લિયા હૈ. ક્યુંકિ શાસ્ત્ર મુમુક્ષુ કે લિયે લિખ રહે હૈ, જ્ઞાનીઓ કે લિયે નહીં લિખતે હૈ. આયા કે નહીં આયા? જો ટીકા હૈ ઉસકો એટલે ટીકા ને અડીને આપણે ચાલવું છે ને. ક્યા બાત આઈ કે એસા ભાષિત હોતા હૈ, એસા ભાષિત નહીં હોતા હૈ, એસી બાત આતી હૈ ને. નહીં એસા નહીં, બિલકુલ નહીં એસા. સમયસાર સમ્યક દર્શન કે જો મુમુક્ષુ અધિકારી હૈ ઉનકે લિયે હૈ. ક્યા? જો સમ્યક દર્શન કે અધિકારી હૈ ઇનકે લિયે સમયસાર હૈ. બીજે ફાલતુ મુમુક્ષુ ઉનકે લિયે ભી નહીં હૈ. મુમુક્ષુ નામ ધરાવે ઉસકે લિયે ભી નહીં હૈ. નામધારક મુમુક્ષુ કે લિયે નહીં હૈ. જો સમ્યક દર્શન કે અધિકારી હૈ ઉનકે લિયે શાસ્ત્ર હૈ તો ઉનકો સમ્યક દર્શન હો જાયેગા. એસી બાત હૈ. ભલે સભી જીવ અનાદિ કે અપ્રતિભૂત જીતને ભી હૈ, સાદી મિથ્યા દ્રષ્ટિ કો છોડ કરકે હમ ગિન લેવે, લેકિન સબ એક સ્તર મેં તો નહીં હૈ, એક ભૂમિકા મેં તો નહીં હૈ, એક સી પાત્રતા મેં તો નહીં હૈ. તો જો સમ્યક દર્શન કે અધિકારી હૈ એસી પાત્રતા મેં આયે હૈ ઇનકે લિયે સમ્યક દર્શન કા યે નિમિત્ત પડતા હૈ. પણ એસી ઉપાદાન પાત્રતા મેં નહીં આયા ઇસકે લિયે વો નિમિત્ત નહીં પડતા હૈ. ચારે ચાહે સમયસાર ટીકા કે સાથ કંઠસ્થ કર લે પર હંમેશા ઉનકા રટણ કરતે રહે. ક્યા? એસા રટણ હોને સે કોઈ જ્ઞાન નહીં હોતા. વો સમયસાર ખુદ એસા બોલતા હૈ કે રે શાસ્ત્ર હૈ નહીં જ્ઞાન, ક્યુંકિ શાસ્ત્ર કુછ જાનતા નહીં હૈ. એસી ગાથા હૈ ઇસમે. શાસ્ત્ર જ્ઞાન નથી કેમ કે શાસ્ત્ર કઈ જાણતું નથી. જાઓ સમયસાર ખુદ અપને લિયે એસા કહેતા હૈ. એસી બાત હૈ. ઇસલિયે નિમિત્ત સે જ્ઞાન હોતા નહીં, પર ઉચિત નિમિત્ત બિના જ્ઞાન હો જાતા હૈ એસા ભી નહીં હૈ. ઉસી કા નામ અનેકાંત હૈ. ઉસી કા નામ અનેકાંત હૈ. જબ દોનો બાત હૈ તો વજન કહાં લે જાના હૈ કે જહાં અપના ઉપાદાન હૈ વહાં વજન લે જાના, નિમિત્ત પર વજન લે જાના નહીં, તો સંતુલન બેઠેગા. ઇસકે બિના સંતુલન રહેને વાલા નહીં હૈ. ક્યા કહેંગે? એસે સમજને વાલે કો મેરે વિચાર કે ભૂમિકા મે નિશ્ચય હોતા હૈ. સમજાને સમજાને બાત ક્યા, લેકે વિચાર કે ભૂમિકા મે નિશ્ચય હોતા હૈ. ઓર જબ નિશ્ચય હોતા હૈ તો અનુભવાંશ સે નિશ્ચય હોતા હૈ. સિર્ફ વિચાર સે નિશ્ચય નહીં હોતા હૈ. એ દોનો બાત લિયા, જો કૃપાળુ દેવને અનુભવાંશ શબ્દ લિયા ને, એ ભાવ ભાષણ મે લે લિયા. ઇધર है वैचारिक भूमिका, लेकिन अकेला विचार वहां नहीं है. भाव भाषण के साथ अनुभवांश के साथ ही निश्चय होता है. और ऐसा निश्चय होता है तब ही ज्ञान बल पैदा होता है, तभी स्वरूप की महिमा आती है, तभी पुरुषार्थ चलता है, तभी स्वसन्मुक्ता होती है. और ये स्वसन्मुक्ता के पुरुषार्थ से ही अनुभव होता है. दूसरा कोई कारण अनुभव में देखा जाता नहीं है. किससे अनुभव होगा? सीधा प्रश्न इतना निकाले कि किससे अनुभव होता है, कैसे अनुभव होता है, कि स्वसन्मुखता के पुरुषार्थ से ही अनुभव होता है. स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ कहाँ से आया? कि ज्ञान ज्ञान के सन्मुख हो गया. क्या? ज्ञान ज्ञान के सन्मुख हो गया तो भाव भाषण हो गया, भाव भाषण हो गया तो महिमा आई, महिमा आई पुरुषार्थ के साथ आई, लब्ध भी बदल गया, लब्ध भी बदल गया। ज्ञान के आधार से कभी उपयोग नहीं चला है, बुद्धि मैंने उपयोग ज्ञान के आधार से नहीं चला है, राग के आधार से और अग्नि के आधार से अनादि से उपयोग चलता है, वो उल्टी पद्धति को छुड़ाया है, इधर ये पद्धति को छुड़ा दिया है। ये थोड़ा कलकत्ता से दूसरे ढंग से आ गया ऐसे बात है, यहाँ तक रखें।